بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما
محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور بچوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حق اور سچ مانتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی دین پر اور شریعت پر قائم و قائم رکھے جس پر بزرگان دین اور سچے مسلمان قائم قائم رہ کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اس لیے کہ میرے دوستوں، یہ دنیا ہمارا ہمیشہ ساتھ دینے والی نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کی زندگی سے تشبیہ کی. فرماتے ہیں اس دنیا کا انتہا بھی دنیا میں اس حال میں اور اس سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تم ایک مسافر ہو. مسافر جب کہیں سفر کرتا ہے اور کسی بھی شہر میں ٹھہرتا ہے تو وہ اپنے رہنے کے لیے کسی کرائے یا ہوٹل کا ایک کمرہ کرائے پر لے لیتا ہے. وہ ہوٹل جتنا بھی اچھا ہو، کرائے کیسی بھی ہو، لیکن مسافر کا ایک سوچنا ہے کہ مجھے اس کمرے میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن، دو دن، چار دن یہی سوچ کے جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اسی طرح ایک مسافر دنیا میں آ جائے اور دنیا کے مکان میں رہے تو اس سوچ کے ساتھ رہے کہ اس مکان میں مجھے ہمیشہ نہیں. اگر یہ سوچ ہماری بن گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس طرح مسافر جس مقصد کے لیے جس شہر میں بھی گیا وہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے، اس ہوٹل اور سرائے کے کمرے پر اس کا دھیان نہیں ہوتا. وہ اس کو صبح سے شام تک سجانے اور ڈیکوریٹ کرنے کی فکر نہیں کرتا. اسے معلوم ہے مجھے رہنا نہیں ہے، ایک کمرہ مل گیا، سونے کا بستر مل گیا، آیا ہو جا. وہ دن بھر جس کام کے لیے گیا ہے اس میں مصروف ہے. کمرے کو سجانے میں، رنگ پینٹ کرنے میں وہ اپنا وقت نہیں گزارتا. ایک سوچ اس کی ہے، اگر وہی کمرہ اس نے خرید لیا کہ اب مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے تو اب اس کی سوچ بدل جائے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہاں کوڑا لگا لو، یہاں پر یہ کر لو، وہ کر لو. وہی ایک کمرہ ہے، سوچ بدلتی ہے کہ مجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو چار دن رہ کے جانا ہے، تو उस कमरे के सजाने का ख्याल ही दिल से निकल जाता है। और अगर वो कमरा खरीद ले तो अब सोच बदल गई कि मुझे यहाँ पर पूरी जिंदगी रहना है, तो अब वो उसके सजाने की तरफ लग जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की ये सोच बनाई है, इस दुनिया में मुसलमान इस दुनिया में यही सोच लेकर जिंदगी गुजार कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे ये सराय और होटल का कमरा इतनी छोड़ना। अगर ये सोच तुम्हारी पक्की हो गई तो दुनिया को आरास्ता करने के चक्कर में तुम कम रहोगे, और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है उस मकसद को पूरा करने में तुम जिंदा नहीं होगे। यह है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की सोच है। जिस मुसलमान ने दुनिया को परमानेंट समझ लिया, आखिरत से उसका तसव्वुर उठ गया, और जिसने अपने को आरजी और मुसाफिर समझा, हमेशा आखिरत का सरमाया जमा करने की फिक्र, जो आखिरत का सरमाया जमा करता है वो छोटी छोटी चीज बाजार है, हर चीज को देखता है, गया है वहाँ बिजनेसमैन बनकर तो हर छोटी बड़ी चीज को देखता है, ये कितने की है, वो कितने की है, कौन सा माल मेरे लिए फायदा होगा, हर चीज को देखता है। और जब एक बिजनेसमैन मार्केट का हर चीज का सर्वे लेता है, सर्वे करता है और वही चीज खरीदता है जिसकी उसको जरूरत है, तो समझो कि वो कामयाब है। और हर चीज चाहे उसके मसरफ की हो ना हो, खरीदता जाए तो जो कुछ लेके गया है वो सब खत्म हो जाएगा और ये इसका कोई मकसद पूरा नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाता है मुसलमान इस दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों चीजें तुम्हारे काम की भी है और तुम्हारे मसरफ की भी चीजें नहीं है, वो तुम्हारे सोच के मुताबिक तुम उसका च्वाइस करो। और ये यकीन रखो खराब चीज लोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, और अच्छी चीज लोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। माल अच्छा कमाया है तो बाजार में उसकी डिमांड होगी, सड़ा माल खरीदा है कोई पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है हमें अमल मिसाला दर दिन खैर, बराबर भी नेक काम करते रहोगे तो इसका तुमको रिजल्ट अच्छा अपनी आमों के नजर। दो आयतों का दो शब्द है, हमें अमल मिसाला दर दिन खैर, जरा बराबर भी खैर और भलाई का काम किया, अच्छा माल तुमने खरीदा, परवरदिगार आलम फरमाता है कि अपनी आंखों से जरूर जरूर तुम उसका अच्छा रिजल्ट देखो। वमन यामल मिसकाला ज़र्रत मिन शर्रिन, और ज़र्रा बराबर तुमने शर भलाई का काम किया है, गलत काम किया है, तो आप ये न समझो छोटा सा काम मैंने गलत किया, नहीं, सब फरमाता है उसका भी खतरनाक रिजल्ट अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अच्छा रिजल्ट भी तुमको कमाना है, और अगर बुराई किया तो बुराई का रिजल्ट आएगा। अल्लाह ताला ने हर चीज में काफी भेजा, जब उस चीज को आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी सोच वहां काम नहीं देगी, रब ने जो उसमें असर पैदा किया है वो असर आपके ऊपर मुतासिर करेगा। मिर्ची आप चबाओगे तो गुलाब जामुन का मीठा मीठा रस आपको महसूस होगा। आप अगर मिर्ची का लड्डू बना लें और ये सोचे कि मैं बूंदी का लड्डू खा रहा हूं, तो आपकी सोच से क्या वो मिर्ची का कड़वापन मीठापन खत्म हो जाएगा? जब मुंह में डालोगे तो पूरे मुंह का एंगल बेंड बेंड हो जाएगा, ऐ चश्मा है अलग से यहां तक चलन में, इसलिए कि कुदरत ने मिर्च के अंदर मीठापन पैदा किया। आपने सोचा मैं लड्डू खा रहा हूं, तो है मेरे दोस्त, ये सोच कुदरती दाखिल को नहीं है। अगर आपको मीठा ही खाना है तो आप रसगुल्ला खाइए, आपको मिठास का असर उसमें और टेस्ट मालूम होगा, इसलिए कि रब ने शक्कर के अंदर मिठास रखी है, इसलिए शक्कर से बनी हुई जो चीज आप इस्तेमाल करोगे उसमें आपको शीरीनी महसूस होगी, ये कुदरत की तासीर। अल्लाह ताला ने इसी तरह अच्छे बुरे अमल में तासीर रखी, अच्छे अमल की तासीर कुरान और हदीस ने फरमाया है कि कामयाबी और आबादी, और बुरे अमल की तासीर तबाही और बर्बादी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि वे बर्बाद। अगर हमने ये फैसला किया नहीं हमें खुशहाल जिंदगी गुजारनी है तो काम वो करो मेरे भाई जो तुम्हें खुशहाल बनाए। आपने फैसला किया है मुझे मीठी चीज खानी है तो मीठी चीज तो करो, तुम्हारा वो फैसला। और अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि मुझे तीखी ही चीज खानी है तो तीखी चीज तो रखो, आपका हाथ किसी ने पकड़ा नहीं, आपका फैसला और आपकी अपनी जिंदगी के बारे में अपनी पसंद चीज को अख्तियार करने का रब ने सबको अधिकार दिया है। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं, समझाने वाला मिलेगा, हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। समझा दिया ये खराबी का रास्ता है और ये अच्छाई का रास्ता है। अब आप चाहते हैं मैं खराब हूं तो खराब रास्ते पर, अगर आप ठंडी हवा में आना चाहते हैं तो चूल्हे से हट जाओ, आपके पास से दूर हो जाओ, और अगर आप गर्मी चाहते हैं तो एसी को बंद कर दो। ये है इंसान की असल सोच। तुम्हें क्या चाहिए इसमें रब ने तुम्हें आजाद छोड़ा है, बुराई चाहिए बर्बादी तुम्हारे सामने आएगी, और अगर आबादी चाहते हो तो नेकी का काम करो आबादी तुम्हारे सामने आ जाएगी, है कुरान की दाची। ये है कुरान का फलसफा, वमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर खैर करोगे उसका अंजाम तुम्हारे सामने आएगा। हदीस पाक में आया है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल शख्स था, सुबह से लेकर शाम तक शर का शर ही करता था, बुराई का काम ही करता रहता था। इतना बुरा था कि पूरी बस्ती में वो बदनाम था और बस्ती के लोग डरते थे कि इसकी बुराई की वजह से कहीं अल्लाह ताला हमारी बस्ती पर अज़ाब न मारे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले परवरदिगार आलम का ये दस्तूर और सिस्टम था कि जब बस्ती में बुराई फैलती थी तो वो अपना अज़ाब न देता। आज हमारे ऊपर से अजाब उठाया गया है, ये हमारे आका और मौला की रहमत का फरमाते हैं लाजिम के रहमतुल्लिलआलमीन बन जाए। पहले जमाने में जो बस्तियों पर अजाब उनकी बुराइयों की वजह से करता था वो मेरी रहमत से रब ने अजाब आम को खत्म कर। ये मत समझो कि हमको अजाब नहीं आएगा, यहाँ नहीं तो वहां जरूर, ये आप ब्रेन वॉश कर दी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले ये सिस्टम था, उस बस्ती में वो इतना क्रिमिनल और इतना खराब आदमी था कि पूरी बस्ती के लोग परेशान थे कि कहीं इसके गुनाहों की वजह से अल्लाह हमारी बस्ती को तबाह न करे, अजाब न नाजिल करे। लेकिन वो बुरा बंदा अपने काम में मशगूल रहता, अचानक एक दिन मर गया और सबको आनी है, अच्छा होता है और तो मरना है, हम सोचे कि हम नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं, वो भी मर गया। जब मर गया तो बस्ती वालों की खुशी मनाए, चलो आज हमारा डर निकल गया कि कहीं अजाब न नाजिल हो गया, पाप खत्म हुआ। बस्ती के जो पढ़े लिखे लोग वो जमा हुए, उन्होंने कहा इसको कब्रिस्तान में हम दफन नहीं करते, इसको मरी हुई बकरी की तरह, मरे हुए जानवर की तरह उसके पैर में रस्सी बांधो और बच्चों से कहो घसीट कर लेके जाए और जहां पूरे बस्ती का कचरा और गंदगी फेंकी जाती है उस गंदी जगह इसकी लाश को जानवर की तरह काट लो। उसका फायदा यह हुआ होगा कि जो उधर से गुजरेगा देख करके वो इबरत हासिल करेगा कि गुणों का अंजाम कैसा होगा। सबने इसे पसंद कर लिया और उस बुरे आदमी को वहां ले जा सकते थे। वो लोग फेंक करके घर वापस गए, उधर से सिदरा से हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर हजरत ईसा के पास आते हैं। वो पैगाम क्या है? ऐ मूसा, ऐ मेरे नबी, उठो। और वो एक मेरा नेक बंदा है जिसको तुम्हारी कौम ने एक इज्जती के साथ पूरा कर कर फेंकने की जगह उसकी लाश को कभी मिलना। उनकी खासियत ये थी कि जब चाहते थे वो अल्लाह ताला के कलाम कर लिया करते, इसीलिए उनको कभी मिलना कहते। कुरान ने भी फरमाया मिनहुम कल्लम अल्लाह, इन नबियों में से वो है जिनसे अल्लाह ताला डायरेक्ट कलाम करता। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से हर्ज किया मांगा, वो तो ऐसा ऐसा गलत आदमी था और क्यों फरमा रहा है कि वो मेरा नेक बंदा। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने एक परवरदिगार आने से सवाल किया, रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया ऐ मूसा तुमने और तुम्हारी कौम ने जो उसके कैरेक्टर और किरदार को देखा वो वैसे ही था, क्यों ना मैंने जो देखा वो तुमने नहीं। मूसा ने हर क्या बोला वो क्या नहीं किया, तो शाम पर माता रहता था। ये बंदा अपने आखिरी उम्र में मरने से पहले एक दिन उसके जहन में बात आई कि मैंने पूरी जिंदगी बुराइयों में गुजारी है, आज लाओ अल्लाह की किताब जो मूसा पर उतरी है जिसका नाम तौरात है, नहा धोकर के उसको पढ़े, उसमें क्या लिखा। उसने ये सोचा, नहाया धोया आप पाक हुआ और अल्लाह की किताब तौरात को उसने उठाया और खोला। पहले ही पेज पर पहली शकल में पहली आयत में उसने ये पढ़ना शुरू किया, ऐ मूसा मैं आखिर जमाने में एक नबी हूँ, उस नबी का नाम अहमद और मोहम्मद होगा, वो नबी सारे आलम के लिए हुजूर की खूबियां उसने पढ़नी शुरू की। जैसे ही जैसे हुजूर का की खूबियां वो पढ़ता जा रहा था, अल्लाह ताला हमारे नबी की अजमत को उसने बयान किया, उसके दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हुई। ऐसी मोहब्बत पैदा हुई तो जहाँ हुजूर का नाम लिखा हुआ था मोहम्मद और अहमद, उस गुनहगार ने उसे उमा और आत्मा से लगा दिया, उसके बाद वो मर गया। अल्लाह ताला फरमाता है जिंदगी में कितनी सी नेकी उसने और उसकी ये नेकी मुझे बहुत पसंद आई। पसंद क्यों आई? मूसा की शरीयत में ये कहीं नहीं लिखा था कि नबी आखिर जमा का नाम देखो तो उसे क्यों, ये मसला कहीं नहीं था उस दिन में। सिर्फ मोहब्बत और अकीदत के जज्बे में आकर उस गुनहगार ने हमारे नबी के नाम को चूमा था। कोई बहुत सारा फर्क नहीं अदा किया। वो हज करने नहीं गया, उसने मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की नमाज नहीं पढ़ी। एक जर्रा बराबर अकीदत मंदाना किरदार उसके दिल में पैदा हुआ और कहा इतने अच्छे नबी आएंगे, मैं तो उस जमाने में रहूंगा नहीं कि उनके हाथों को बोसा दूं, चलो नाम ही को चुप लो। मैं दर्रा नवाज हूँ, मैं बंदा नवाज हूँ, मैंने अपनी गफारियत और रहमानियत के पानी से उसके नामे आमाल के जितने गुनाह के धब्बे थे सबको मैंने धो करके खुलू और उस बंदे को मैंने अपने नेक बंदों में शामिल
कर,
इसलिए मैंने कहा वो मेरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछे और गुनहगार को लेकर आए, नहलाया धुलाया कफन फैलाया और सब उन्हें पसंद कर बराबर कोई नेकी करता है तो रब फरमाता है मैं उसका खुशगवार विकल्प उसके सामने पेश
करता हूँ।
एक गुनहगार पूरी जिंदगी का गुनाहों का बोझ ले चलाता और एक जर्रा नेकी का काम उसने कर लिया, नुक्ता नवाज रब ने अपनी रहमानियत और अफारियत से उसे बख्श कर और उसे वो दर्जा दिया है अल्लाह अकबर की नबी उसको नहला रहे, नबी कफन पहना रहे, नबी उसे कब्र के उतार रहे। ये खुश नसीबी क्यों उसके पास आई, एक जर्रा बराबर नेकी को रब ने कबूल कर लिया तो वक्त का सबसे बड़ा खुश नसीब बन गया। परवरदिगार आलम जब नेकियों को नवाजता है तो नेकी करने वाले के पिछले गुनाह को नहीं देखता, नेकी कबूल कर लेता है तो ऐसे लोगों गुनाहों को माफ करके अपने नेक बंदों में शामिल कर लेता है।
सुभान अल्लाह।
तो हम छोटी छोटी नेकियों को छोड़ दें, छोटी छोटी नेकियां तो आज हमारे लिए कुछ नहीं है, हम बड़ी बड़ी नेकियां फर्ज छोड़ रहे हैं, वाजिब छोड़ रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है, जब छोटी नेकी पर इतना बड़ा सवाब देता है तो मेरे दोस्त को सजदा करने पर कितना तुमको सवाब उस गफूर रहीम का खजाना कितना बड़ा, उसका खजाना कभी कम नहीं हो रहा। लेने का हौसला चाहिए, लेने का हौसला तुम्हें पैदा करना चाहिए। जब आपने सुन लिया सरला बराबर नेक काम पर वो इतना नवाजता है तो बड़े बड़े काम पर ऐसा नवाजेगा कि होकर सट्टी लगी उसकी रहमत के ताकले उतरेंगे। सड़क पर चलोगे फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करवाएंगे, शालिमों की हुकूमत के बीच में साथ लोगे तुम्हारा पाल कोई बेटा नहीं कर सकता हुआ वो मुमिन हो। रब फरमाता है मैं अपने जिब्रील को भेज करके अपने बंदों की मदद करता। ये है नेकियां, ये है अच्छाइयां, क्यों हम अच्छाइयों से दूर हो रहे हैं, नेकियों को छोड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों अपनी थिंकिंग बदलो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो और नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को बिल्कुल अलग करो। जहां तक हो सके छोटी से छोटी नेकी पर अमल करते चलेगा और इसी तरह बड़ी बड़ी बुराइयां को तबाह करती हैं। अल्लाह फरमाता है छोटी नेकी भी तुमको तबाह करा। एज ए एग्जाम्पल, रात को आपके घर में छोटी सी चिंगारी कहीं से हवा के जरिए उड़ते आई, आप लेटे लेटे देख रहे हैं छोटी सी आग की चिंगारी, आपने कहा ये क्या करेगी मेरे एयर कंडीशन बंगले को, और ये छोटी सी चिंगारी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। आंख बंद के सो गए, वो चिंगारी कहीं कपड़े पर रजाई पर कपास पर जाकर के गिरी और आहिस्ता आहिस्ता वो कपास के ढेर को या कपड़े के गठरी को उसने जलाना शुरू किया। छोटी सी नन्ही थी, आपने उसको مسل کر کے ختم نہیں کیا، اپنے گھر میں گھومنے پھرنے دیا، ہواؤں کے زور پر کہیں بھی جا کر ہوتی، اور تھوڑی دیر میں کپاس کا کھیت جھوگا پیٹ گیا، کپڑے کی گندگی جمی، کوئی چیز جہاں پر وہ جلانے کی طاقت رکھتی تھی، اور آپ کرناٹے کی نیند سو رہے، اچانک پورے آپ کے بنگلے میں آگ لگی، یہ کس کا قصور ہے؟ ہماری سوچ آپ کی چنگاری کو معمولی مت سمجھو، اگر کہیں وہ اپنے جلنے کی چیز پر گر گئی تو پورے بنگلے کو تباہ کر دیں، بعد میں آپ سوچو گے ہائے ہائے اس چنگاری کو میں نے وہی اس کو دبا دیا ہوتا تو میرا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، ہو گیا تو پچھتا کر کیا کرو گے؟ ارے اس پچھتانے سے پہلے جہاں خطرہ منڈلا رہا ہے اسے دبا دو، پھر پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے گناہ کی چنگاری اور وہ ہے آپ کی چنگاری، اسے اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو بنگلے کو جلا سکتی ہے، ایسے گناہ کی چنگاری پورے عمل کو جلا سکتی، اس کی بھی مثال اللہ نے دنیا میں پیش کر۔ شیطان بہت بڑا نیک تھا، عابد تھا، زاہد تھا، عالم تھا، جنت اس کا مکان تھا، فرشتوں کو سبق پڑھاتا، اس کو بہت بڑا رب العالمین نے پروفیسر مائسٹرام طرف بنا دیا تھا، خدائی یونیورسٹی کا شرف تھا، اس نے نماز کہاں پڑھی تھی؟ جنت میں، سال دو سال نہیں، سو دو سال نہیں، بلکہ 17 لاکھ سیونٹی، یہ 17 لاکھ سال تک اس نے جنت میں عبادت کی۔ کوئی اتنا بڑا آدمی تو کہا اتنا نیکیوں کا ویئر ہاؤس اور گراؤنڈ گوڈاؤن کسی کا بھرا ہوا ہے، لیکن ذرا گناہوں کی بھجن کرتا کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا ان کی تعریف کے لیے جھک جائے، سب جھک گئے، سب کی نیکیاں سلامت، لیکن یہ وائس چانسلر صاحب زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، یہ نہیں جھکے، بولے بشر ہے، مٹی کا پتلا ہے، نہیں جھکتا تو کیا ہو، بس یہی تصور ہے۔ اور جب سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور یہ کھڑا رہا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ماں مانا تھا ان دس جگہ تم کو کس بات نے روکا کہ آدم کو سجدہ کرو نہ کرو، سجدہ کرنے سے کس بات نے روکا؟ تو فوراً بولتا الم اکول، میں کیا ایک بشر کو سجدہ کروں؟ میں بشر کو سجدہ نہیں کروں، یہ اس کی تھنکنگ، انا خیر دن ہو، میں آپ سے بنا ہوا ہوں، یہ میں مٹی والے سے آپ کر، یہ اس کی سوچ ہوئی تو رب نے فرمایا وقال من الکافر، یہ کافر ہو گیا، تو خروج منہا مذموم، میری جنت سے نکل جا، کافر گدا اور دلیل بن جا، نکل گیا۔ نبی کا خطاب جو ہوتا ہے اس کو توبہ نصیب نہیں، جنت چھوڑ دیا، اتنا بڑا گبر اور چیر تھا، اگر چاہتا تو کان پکڑ کے کہتا مولا غلطی ہوئی معاف کر کے، خدا کی قسم رب آج بھی فرماتا ہے شیطان آج بھی قبر آدم کو سجدہ کرنے میں اس کی غلطی معاف کر، لیکن نہیں کر رہا ہے، نبی کے گستاخ کو توبہ نصیب نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ آپ مولانا کیا، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے رب فرماتا ہے بہت لا لفقہون، جتنا بھی سمجھاؤ گے وہ سمجھیں گے۔ کچھ لوگ آج ایسی چیزیں رکھتے ہیں، ہم ان سے دوستی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا، رب فرماتا نہیں سمجھے گا، اور یہ آج کا دو ٹانگ کا بولتا سمجھ جائیں گے، ارے خود کو بھی ویسے ہی بنا لے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، رول اینڈ ریگولیشن، رب فرماتا امول ابو کو کہہ کر ہوں ان بگڑے ہوئے بد عقیدوں کی شہرت پہ ہمیشہ دور رہنا، تم انہیں نہیں سمجھا سکتے، وہ تو में समझा करके जंगल में डालते हैं। बिगाड़ना आसान है, बनाना आसान नहीं। समझे? आप एक मकान बनाते हैं साल में, दो साल में तैयार होता है, और बिगाड़ना हो तो बुला लो बुलडोजर, मारे जाए हर हर एक घंटे में पूरा मकान जमीन दूर हो जाएगा। तामीर में देर लगती है, तकरीब में देर नहीं लगती। आप एक शर्ट बनाते हैं तो कपड़ा जो बना है बहुत देर में बन करके आया, कपास निकाला, ये किया, वो किया, सारे प्रोसीजर किए, मोहम्मद लाख कंपनी में गया, कपड़ा बना आया। अब उस कपड़े को बिगाड़ना है तो क्या लोग फटाफट सब चिंतियां बिगाड़ने में देर नहीं लगती। ये फिंटन इस्लाम पेश कर रहा है, एक इंसान जो है उसे संवारने और बनाने में देर लगती है, बिगड़ने में देर नहीं लगती है, थोड़ी सी देर में वो बिगड़ जाता है। तामीर में देर लगती है, तकलीफ में देर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इस साल में बिगड़े हुओं को ऐसा संवारा कि कोई सिद्दीक बन गया, लेकिन यजीद को बिगड़ने में देर नहीं लगती। हुकूमत आई और बिगड़ गया, सहाबी का लड़का बिगड़ गया, और कुफार को संवारने में 23 साल नबी को रखने मसरूफ रखा है। कुछ सोचे आप, हुजूर तो अगर दुआ करते हैं मौला सारे काफिरों को जमीन में धंसा दे तो सब धंस जाते, लेकिन वो धंसाने के लिए नहीं आए थे, धंसे लोगों को ऊपर लाने के लिए। ये है तामीर। किसी चीज को बिगाड़ना है तो चंद लफंगे बिगाड़ देते हैं, और किसी चीज को बनाना है तो ये सबके बस की बात नहीं है। तौहीद इलाही जिसे अता फरमाता है वही तामीर का जज्बा पैदा करता है। हर एक आलिम नहीं बन सकता, अगर सब आलिम बन जाए तो बेचारे आलिमों का कबाड़ा ही हो जाए। इसलिए रब ने इरशाद फरमाया, वल तकुन मिनकुम उम्मतुन मिनकुम यदउना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ऐ लोगो, तुम सब नहीं बन सकते, वल तकुन मिनकुम, तुम में से ऐसी एक जमात निकलेगी जो लोगों को खैर की तरफ बुलाएगी, बुराइयों से मना करेगी, नेकियों पर हुक्म देगी। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब है। और जो इनकी दावत पर हक कबूल करके आगे बढ़ेगा, परवरदिगार आलम उन्हें भी फलाह और कामयाबी अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं खुद एक गुनहगार और सिहकार आदमी आपके पास खड़ा हूँ। मुझे हक नहीं है कि आपको दावत दूं, लेकिन रब ने मुझे थोड़ा सा इल्म दिया, इसलिए दौ पैदा हो गया। मैं अपने दोस्तों से कहूँ, बुराइयों को छोड़ो, नेकियों की तरफ करो। जब फरमाता है बस बस का कुल खैरा, नेकियों की तरफ दौड़ करो, ये नेकी है, नेकी है। एक जगह आग जल रही है और आग में आप कूदने के लिए भी जाएंगे, और आपके पास बैठ करके झिंगारियां उड़ रही है तो उसे अपने कपड़े पर नहीं आने देंगे। ये गुनाह का अलावा जल रहा है, इसके दूर रहो इस भट्टी से, और चलो ऐसे राह पर चलो जहाँ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें डाला। मैं कहा करता हूँ कि देखो, आज दुनिया तुमसे रूठी गई है और तुम दुनिया के पीछे भाग रहे। सूरज इस तरफ निकला और आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो तो आपका साया किधर पड़ेगा? पीछे होते है ना, कॉमन सेंस की बात। सूरज इधर, आप यहाँ, साया पीछे पड़ेगा। सूरज वही, साया यही, आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, पीठ कर लीजिए सूरज की तरफ। अब आपका साया इधर पड़ेगा, सामने पड़ेगा। जब आपको इतना मालूम कि हमारे चेंज होंगे, सूरज भी चेंज हुआ वो तो वही है, साया भी चेंज नहीं हुआ वो वही है, आप सिर्फ अपने डायरेक्शन को चेंज किया है तो अब नतीजा बिल्कुल उल्टा हो गया। सूरज पीछे हो गया, साया आगे हो गया। पहले जब सूरज की तरफ आप खड़े थे तो साया गुलाम और मुक्तरी बनकर के पीछे खड़ा था, और सूरज की तरफ पीठ कर लिए तो अब साया आपका इमाम बन गया, आगे खड़ा खड़ा है कि नहीं था। अब आप साये को पकड़िए, दौड़िए, तो साया क्या वही खड़ा रहेगा? जिस स्पीड से आप दौड़ेंगे उसी स्पीड से वो दौड़ेगा। आप खड़े हो जाएंगे वो भी खड़ा हो जाएगा, आप उसे पकड़ना चाहेंगे वो भी झुकेगा। एक अजीब मंजर होगा। अल्लाह ताला फरमाता है लोगों, दुनिया साया है, दुनिया साया है, और तेरा नबी इसमें वश राज मुनीरा, मैंने अपने हबीब को रब की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, वश राज मुनीरा चमकता सूरज बनाकर
भेजा।
सब जरा अपना डायरेक्शन दे दो कि सूरज की तरफ हमारा मुंह है, शरीयत की तरफ हमारा मुंह है। अगर है तो दुनिया साये की तरफ तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और अगर तुमने चेंज कर लिया है डायरेक्शन तो याद रखो, दुनिया तुम्हारे आगे होगी, उसे पकड़ नहीं पाओगे। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अधर में खड़े रहोगे। और मुसलमान की पोजीशन ये है कि सिराज मुनीरा से वो खेल चुका, दुनिया की तरफ दौड़ रहा है, दुनिया छाए की तरह भाग रही है, ये दुनिया के पीछे भाग रहा है। ऐ लोगों, अगर इस दुनिया को अपने कदमों में लाना है तो मुस्तफा की तरफ भागो। थिंकिंग बदल गई, सिर्फ आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना है। गुंबदे खदरा के मकीन की तरफ चलो, इंशाअल्लाह कामयाबी होती चली जाएगी। दुनिया साये की तरह गुलाम बन के तुम्हारे पीछे चली जाए। हमें नामल इस पारा सर रखे में खे रहे मेरा, हमें नामल इस पारा सर अपनी जिंदगी को हराश रखो। मस्जिदों में आकर सजदा करो, आपस के दिलों में एक दूसरे के मोहब्बत करो, दूरतों को निकाल निकाल कर दो। ये अगर लीवर के अंदर टीबी का पॉइंट आ गया है तो पूरे बदन पर डॉक्टर तवज्जो नहीं देगा। उस लीवर के अंदर जो टीबी का जख्म आ गया है उसे निकालने की कोशिश करेगा। इस दिल के अंदर कुदूरत में पैदा हुई है तो हाथ मुंह धोने से वो कुदूरत नहीं निकलेगी। दिल में अगर कुदूरत पैदा हुई है, तौबा करके आपस में मिलजुल करके अपनी जिंदगी को अंदर से भी आरास्ता कर लो, कहां से भी इसलिए रब फरमाता या अय्युहा लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों जल्दी हो गई है तो सच्ची पक्की तौबा रब से कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे नाम अमाल को साफ सुथरा करेगा। अल्लाह